पानी पीना, खाना, भोजन करना, ये सब क्रियाएं बंद रहें। आप लोगों ने कीर्तन किया और भागवत पाठ किया, बहुत अच्छा रहा। आज ही बलदेव प्रभु जी का जन्म तिथि है। कृष्ण सच्चिदानंदमय है। इसमें तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद। कृष्ण स्वयं पूर्ण चित है, ज्ञान स्वरूप, और बलदेव जी सत्ता है। जितना जगत में जड़ या चेतन जो कुछ भी सत्ता दिखाई देता है, इस जगत में, वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में, समस्त सत्ताएं बलदेव प्रभु जी से ही प्रकटित हुई। और ह्लादिनी शक्ति आनंद देने वाली श्रीमती राधिका जी, जो कुछ भी आनंद होता है और आनंद दिया जाता है कृष्ण के द्वारा, वो ह्लादिनी शक्ति का कार्य। जब एक साथ में रहते हैं तब तो कृष्ण ही सच्चिदानंद भगवान है, और पृथक पृथक रूप में जब होता है तो कृष्ण पृथक हैं, बलदेव जी पृथक हैं, ह्लादिनी शक्ति जी राधिका हैं। आज बलदेव प्रभु का जन्म दिन है। किसी किसी ग्रंथों में लिखा गया है, ग्रंथ गर्ग संहिता में, कि कृष्ण बलदेव जी का जन्म अगले कृष्ण जन्म के बाद में, भादों के बाद में, जो छठ आएगी उस छठ में बलदेव प्रभु जी का जन्म हुआ। कृष्ण से कुछ दिन बाद में उनका जन्म हुआ, अर्थात एक वर्ष के करीब बलदेव जी बड़े हो जाते हैं। किंतु स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में भी, गोपाल चंपू में, आनंद वृंदावन चंपू में ये लिखा कि बलदेव जी का जन्म इस पूर्णिमा में हुआ, आज के दिन, और इसके 8 दिन के बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। एक ही साथ जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, बलदेव जी ने आंखें नहीं खोली, कुछ नहीं देखते थे, तो यशोदा मैया की गोदी में जाकर के कुछ मुस्कुराते थे। जब कृष्ण जन्म लिया तो उनको देखे पहली बार, और तब दोनों एक ही साथ नामकरण हुआ। दोनों एक ही साथ में हमागोड़ी पर चले, घुटरुओं पर चले, और दोनों का सब काम एक साथ में हुआ। यदि बलदेव प्रभु जी कृष्ण से करीब करीब 11 महीना या 12 महीना बड़े होंगे, तो इतने दिन तक बलदेव जी का नामकरण क्यों नहीं हुआ? साथ साथ में खेले कैसे? ये सब संभव नहीं था। इसलिए कल्प भेद से गर्ग संहिता का बात सत्य हो सकता है, किंतु युक्ति और तर्क और इत्यादि के बल पर देखा जाता है कि गोपाल चंपू में जो लिखा है वही ठीक है। इसलिए आज ही जन्माष्टमी से पहले 8 दिन पहले बलदेव जी का जन्म मनाया जाता है। जिस समय कंस देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया, वसुदेव जी की और भी 6 पत्नियां 7 पत्नियां थीं, उनमें से रोहिणी जी को घोड़ी पर चढ़ाकर और उन्होंने गोकुल में भेज दिया। उस समय वह 3 महीने की गर्भवती थी। फिर वहां पर गई, 7वें महीने में देवकी के गर्भ में जो कृष्ण बलदेव जी थे उनको जोगमाया ने आकर्षण कर रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। तात्पर्य यह कि जो पूर्ण बलदेव हैं ब्रज वाले, उनमें जो अंश हैं वो बलदेव जी मिल गए, फिर एक हो गए। इसके बाद में यह 7वां महीना हुआ और 7 महीने ये देवकी जी जसोदा मैया को जब गर्भ हुआ, साथ साथ में इनका भी गर्भ बढ़ने लगा। जब इनका 8वां महीना हुआ तो उनका हो गया 14वां महीना। इसलिए बलदेव जी 14 महीने के बाद में कौन जेठ अषाढ़ श्रावण भाद्र वार कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन देखो ने वो श्रावण महीने के पहले आज के दिन में वो प्रकट हुए। इस प्रकार से स्पष्ट गोपाल चंपू में लिखा है, विशेष स्पष्ट के लिए गोपाल चंपू आप लोग देख सकते हैं। बलदेव जी के हाथों में हल मुसल है, ब्रज में जो कृष्ण है वही मूल कृष्ण है और वही बलदेव हैं। कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, जैसे कृष्ण बंसी हाथों में लेते हैं, बलदेव जी भी वो पत्ती का बना हुआ क्या कहते हैं उसको लेकर के चल रहे थे और प्रलंबासुर को मारा, भेनकासुर को मारा, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। इसके बाद में बलदेव जी जो हलमुसल धारण करते हैं, इसका कारण है जीवों की खेती करते हैं और मुसल से जमीन को सपाट करते हैं। जीव की खेती कैसे करते हैं? जो बलदेव ब्रज में है वो मुक्त जीवों को प्रकट करते हैं, कृष्ण के परिकरों को जो कृष्ण की सेवा वृंदावन में रह करके करते हैं और वही संकर्षण हो करके मूल संकर्षण हो करके द्वारका में और सब जीवों को प्रकाश करते हैं, वो भी नित्य मुक्त हैं, वो द्वारका में कृष्ण की सेवा करते हैं और वही महासंकर्षण होकर के बैकुंठ में आते हैं। तब उनसे जो जीव प्रकटित होते हैं, नारायण राम नृसिंह जितने भी भगवत अवतार के प्रकोष्ठ हैं उनमें वो सेवा करते हैं। इसका अतिरिक्त भी बलदेव प्रभु जी कृष्ण के आसन बसन भूषण बंसी जो कुछ भी है बलदेव प्रभु जी ही है। और फिर महासंकर्षण के बाद में महासंकर्षण ही कर्णाब्धिशायी में विष्णु होते हैं और उनसे जो जीव निकलते हैं तटस्थ जीव, वो वैकुंठ की तरफ में देखने से वैकुंठ में गए, और जो माया की तरफ में देखा वो माया में प्रवेश कर गए। और उनका एक और अवतार शेष है, जो पृथ्वी को अपने फण पर धारण किए हुए हैं, और उन्हीं पर कर्णाब्दिशाही विष्णु और गर्भोदशाही विष्णु उन पर शयन करते हैं। ये पांच रूपों में हैं। ऐसे जो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं, उन बलदेव जी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ लिखा गया है। बलदेव जी जब तक, बलदेव जी के बहुत से वृतांत हैं। बलदेव जी ने धेनुकासुर को मारा, माने क्या, गुरु का कार्य है अज्ञानता को दूर करके तत्व ज्ञान प्रवेश कराना, इसलिए बलदेव जी ने अज्ञानता रूपी धेनुकासुर का वध किया, उसको दूर किया, और कृष्ण तत्व को जीवों के हृदय में भर देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने प्रलंबासुर को मारा, वो कपटता का अवतार है, भक्तों के हृदय में जो कपटता रहती है धर्म अर्थ काम मोक्ष लौकिक सुख इत्यादि को, इसको दूर करके बलदेव प्रभु जी उनके हृदय में प्रेम भक्ति का बीज अंकुरित करते हैं। ये बलदेव जी प्रलंबासुर को मारा और द्विविध बंदर को मारा द्वारका में। द्विविध बंदर रामचंद्र जी का परिकर था, रामचंद्र जी के ओर से होकर के रावण से लड़ा, किंतु लक्ष्मण जी की निंदा करता था। और वही कृष्ण लीला में जब बलदेव जी हुए तब तक वो द्विविध बंदर जीवित था, वो द्वारका के कौन पर्वत पर रहता था। बलदेव जी वहाँ गए अपनी प्रेयसियों को लेकर के और गान इत्यादि कर रहे थे, बलदेव के प्रति भी वो निंदा करने लगा, वो पेड़ पर चढ़ करके नाना प्रकार की गंदी हरकतें करने लग गया और गोपियों के वस्त्र खींचने लगा, तो बलदेव जी ने उसको अपने हल से खींच करके मुसल से उसका विनाश किया। ये बलदेव जी का कार्य है। तात्पर्य क्या है, यदि कोई भगवान का भजन भी करे किंतु गुरु और वैष्णव की निंदा करता है, गुरु की निंदा जरा कठिन है, नहीं होती, किंतु वैष्णव की निंदा भी करेगा शतांग निंदा, तो बलदेव जी उसकी रक्षा नहीं करते। बलदेव प्रभु जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे, उस समय शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग भागवत या पुराण सुन रहे थे, और वक्ता थे रोमहर्षण। उस समय में सब ऋषि उठ करके, जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी थे, मुक्त महापुरुष थे, उन लोगों ने बलदेव प्रभु जी का अभिनंदन किया, उनको चरणों में प्रणाम किया, और ये वहीं पर बैठा रहा, मैं भागवत का वक्ता हूँ, मैं आचार्य हूँ, कैसे उठ करके खड़ा होऊंगा उनके लिए। उठ करके खड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, बैठिए, हरे कृष्णा, क्या समाचार, हाँ अच्छा, अच्छा हरे कृष्णा, हाँ हाँ
अच्छा हाँ, आपका कल्याण हो, आपका আমি মথুরা আসলেই আপনার কাছে প্রথমে আসব অবশ্য। আপনার উপরে কৃষ্ণ প্রসন্ন হউ এবং আপনার সদ্গতি প্রদান করুন, কৃষ্ণ ভক্তি যাতে আর জন্ম মরণের চক্করে আপনাকে নাচতে হয়। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি অবশ্যই আসবো, জন্মাষ্টমী পূর্বেই আপনার সঙ্গে দেখা করব। আচ্ছা আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। বাবা মত সময় হল, অন্তিম সময় না
বিশেষ
ডাক্তার সাহাটা অন্তিম সময় যাচ্ছে, বলবি নেই পারি এখন তো কথা বলে সুস্থ।
बलदेव प्रभु जी ने देखा, सब उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया, और ये पाषंडी उठ करके खड़ा नहीं हुआ, मैं विश्व का गुरु हूं, और ये उठा नहीं, बस अपने हाथों से ही उसका गला काट दिया। तात्पर्य क्या, यदि अपने से पूज्य वैष्णव लोग आते हैं, गुरु आते हैं, उस समय कोई भी काम कर रहे हो छोड़ करके उठ करके उनका अभिवादन करो, और नहीं तो बलदेव प्रभु जी क्षमा नहीं करेंगे। जिस समय में कुछ कृष्ण से उनमें मतभेद भी देखा जाता है बलदेव से, कैसे मतभेद, किसी समय में जब सुभद्रा जी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो बलदेव प्रभु जी चाहते थे इसकी शादी दुर्योधन से हो, क्योंकि गदा की शिक्षा उसको दी थी, उन पर कुछ विशेष प्रीति थी, किंतु कृष्ण, देवकी, वसुदेव और जितने भी द्वारकापुरी के लोग थे वो चाहते थे उससे शादी न हो, अर्जुन से शादी हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कुछ समझाया, और कृष्ण अपने हस्तिनापुर से यहाँ आए द्वारका में, और त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर लिया, और वेश करके जम समुद्र के किनारे भगवान का भजन करने का भाव दिखलाने लगे। स्वयं कृष्ण जाकर के प्रणाम किया, और द्वारका के जितने लोग हैं सभी लोग जाकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं, चारों तरफ में हल्ला हो गया, बड़ा सिद्ध एक सन्यासी, ब्रह्मचारी सन्यासी आया है, सभी लोग उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। सुभद्रा देवी जी भी उनके दर्शनों के लिए एक दिन गई, उनके साथ में सब सहेलियां भी थी। वहां जब गई तो कृष्ण ने उनको ले, वो किसकी पूजा करने के लिए, दुर्गा देवी की या किसकी पूजा करने के लिए गई, और कृष्ण अर्जुन ने वो दंड फंड छोड़ करके और उनको उठा करके रथ पर चढ़ा दिया, और रथ की बागडोर उन्हीं सुभद्रा जी को दे दिया, रथ चलाना जानती थी, क्षत्रियाणी तो थी वो भी जानती थी, और कृष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर के उनकी सेनाओं के, जदुवंशी के सेनाओं के साथ में युद्ध करने लगे। बलदेव जी ने कहा, अरे हमारी बहन का उसने अपहरण कर लिया, बस अपना उठाया अस्त्र शस्त्र और मारने के लिए दौड़े, उस समय में कृष्ण आ गए। आगे बोलिए देखो तो सही, हमारी बहन को अर्जुन ने नहीं अपहरण किया, देखो जो रथ कौन चला रहा है। तो उन्होंने देखा जो अर्जुन चला, सुभद्रा जी चला रही हैं, तो कौन किसका अपहरण कर रहा देखते नहीं है। बलदेव जी ने कहा तो पहले तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा, यदि पहले कहते तो हम अर्जुन के साथी में हम इसकी शादी करते। कृष्ण ने और कहा जी बलदेव प्रभु, आप यदि अर्जुन को मार डालेंगे तो आपकी बहन विधवा हो जाएगी, इसलिए आप सोच समझ करके काम कीजिए। बलदेव जी ठंडे पड़ गए और फिर अर्जुन को बुला करके और बड़े ठाट बाट से उनकी शादी हुई। इसी तरह से बलदेव जी एक बार कृष्ण के पुत्र शाम्ब गए हस्तिनापुर में, अर्जुन दुर्योधन की लड़की बड़ी सुंदरी थी, उसको देख करके मुग्ध हो गए और वहां से वो अपने रथ पर उसको बैठा करके और ले आ रहे थे। दुर्योधन ने कहा जारी हम लोग की को परास्त करके वो ले जाएगा, बस कर्ण द्रोण भीष्म पितामह आज सब हजारों रथियों ने चारों तरफ से घेर करके उसको कैद करके रख दिया। नारद जी से समाचार मिला जब द्वारका पार बलदेव जी को कृष्ण को, तो बलदेव जी ने कहा जैसे कृष्ण को जो आप रहिए मैं ही जाता हूं उसको मना करके और ले आऊंगा। तो वो गए और नगर से बाहर हस्तिनापुर से बैठे और उद्धव जी को भेजा जे जाओ उन लोगों को कहो दुर्योधन और उनके परिकरों को कृष्ण विश्व के मालिक हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं, उनको ब्रह्मा इत्यादि भी अपने किरीटों से उनके चरणों की पूजा करते हैं, इसलिए उनके पुत्र जो शाम्ब हैं, शाम्ब को जिससे वो प्यार किया है दुर्योधन की लड़की के साथ में अभी विदा कर दें, और यदि नहीं करेंगे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा। उद्धव ने जब कहा तो दुर्योधन इत्यादि अरे सिर की जूती पैर पर चढ़ना चाहती है, हम लोगों के वजह से ये जद्वंशी लोग आज ऊपर में उठे हुए हैं और सभी लोग उनको मानते हैं, नहीं तो नीच जाति के उनको कौन मानता था। जद्वंशी लोग हमने कृपा करके कुंती को लिया और उनसे संबंध वैवाहिक किया, इसलिए जगत में पूज्य हो रहे हैं, नहीं तो उनको कोई नहीं मानता। उद्धव जी ने समझाने पर ही नहीं समझे, बलदेव जी को आकर के बोले जैसे वो ऐसे कह रहे हैं। बलदेव जी ने अच्छा हम लोग जूती थे और उनको ऊपर उठा दिया इन्होंने, ठीक। पर क्रोधित होकर के हल लिया और हल से लेकर के हस्तिनापुर को उठाया और गंगा में डुबा देंगे। जब इस प्रकार किया तो दुर्योधन को मालूम हुआ और सब लोगों को जी हिलने लगी कैसे, तो भीष्म पितामह इत्यादि को आगे कर करके उनके पास में आए, हाथ जोड़ कर हिलने लगे। तब बलदेव प्रभु जी ने उनको क्षमा किया और कहा जे सांब को और उसकी पत्नी को विदा करो। तब उन्होंने विदा किया दान दक्षिणा दे करके और फिर द्वारका में जा करके उनकी शादी। इस प्रकार से बलदेव जी जब द्वारका में थे, गोपियों का यह संदेश मिलता था जो कृष्ण के विरह में बहुत तड़फड़ा रहे हैं, छटफट कर रहे हैं। बलदेव जी ने कृष्ण से कहा बातें तो तुम खूब करते हो और मैं जाऊंगा जाऊंगा कहते हैं, आज कल वर्ष हो गया नहीं गए, क्यों रोते हो? दिखलाने के लिए। वास्तविक में गोपियों के प्रति नंद बाबा यशोदा के प्रति तुम्हारी प्रीति नहीं है, तो तुम न जाओ भले ही, किंतु मैं जा रहा हूं। कृष्ण ने उनको विदा किया और वो यहां पर आए, और चैत्र और वैशाख ये दो महीने ब्रज में रहे। जब ब्रज में आए तो गोपियां लज्जा छोड़कर उनके पास में कभी लज्जा से नहीं आती थी कि आज लज्जा छोड़ करके आई और बोलने लगी, जिन कृष्ण के लिए हम लोगों ने अपने पतियों को, अपने भाइयों को, माता पिता को, गुरुजनों को छोड़ करके उनके समीप आई, और आज हमें छोड़कर कृतज्ञ की भांति वो द्वारका चले गए हैं। कुशल से हैं, दूसरी बोली कुशल से क्या, वहां की जितनी भी राजकुमारियां हैं उन्होंने 16,108 रानियों से शादी की है, किंतु न जाने कैसे उन पर वो विश्वास करती हैं, विश्वासघाती कृतज्ञ के ऊपर में। तीसरी बोली, अजी बात छोड़ो उनकी, वो झूठे लवार हैं, अकृतज्ञ हैं। यदि वो हम लोगों को भूल सकते हैं, हम लोगों ने उनके लिए सब कुछ छोड़ा और हमको वो भूल सकते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं भूल सकते? उनको भूल जाना ही ठीक है, इस प्रकार से कहने लगी और विरह में प्रलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बलदेव प्रभु जी ने उनको समझाया और समझा करके दो महीनों में तरह तरह की बातों को कहते हुए उनको संतना देने की चेष्टा करते हैं, किंतु उनका विरह का ज्वर कमता नहीं, इसलिए उनको भुलाने के लिए उन्होंने रामघाट पर रासलीला की। रासलीला में सभी गोपियां थीं। कहीं कहीं पर यह लिखा है कि बलदेव की अपनी जो प्रियसी गोपियां थी वही रास में सम्मिलित हुई, किंतु यह बात ठीक नहीं उतरती। क्यों? सभी प्रकार की गोपियां बलदेव जी से आकर के अपना दुखड़ा रो रही थी और उनसे कृष्ण के विरुद्ध में ये सब बातें कह रही थी। वो सभी गोपियां थी, कृष्ण की प्रेयसियां भी, बलदेव की प्रेयसियां भी, इसलिए अंत में केवल अपनी प्रेयसियों के साथ में रासलीला करेंगे ये नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं अपनी प्रेयसियों और कृष्ण की प्रेयसियां भी उस रास में सम्मिलित हुई। रास माने क्या? रास माने नृत्य और गीत। बलदेव प्रभु जी कृष्ण जैसा ही सुंदर स्वर से गान करते थे, सब गान के जितने भी लय और हैं बलदेव प्रभु जी जानते थे, इसलिए उनके साथ में नृत्य किया और गान किया, इसमें कोई दोष की बात नहीं। इसमें बलदेव प्रभु जी ने उनको संतुष्ट करके उनके विरह दुख को कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, इसलिए वहां पर रामघाट पर उनका रास हुआ और रास के बाद में फिर उनको सांत्वना दे करके फिर बलदेव प्रभु जी चले गए। इसी प्रकार से बलदेव जी के बहुत चरित्र हैं, बहुत वैशिष्ट्य हैं। नित्यानंद प्रभु के रूप में जगाई मधाई की मार खा करके भी और उनको प्रेम दिया। रामावतार में लक्ष्मण होकर के थे पहले छोटे भाई, किंतु राम ने ऐसे आदेश दिए जिसको करना उनके लिए बड़ा भारी मुश्किल था। उन्होंने सीता जी को वनवास दिया, ओ सीता जी को ले करके वन में ले जाओ और वाल्मीकि के आश्रम की तरफ में छोड़ाओ। उनको बड़ा दुख हुआ। उसी प्रकार से जब वनवास का सम पूर्ण हो गया समय और रावण को वंश के साथ में ध्वंस किया, विभीषण को राज्य तिलक दिया, उस समय सीता जी को लेकर के आए लोग तो इन्होंने कहा मैंने अपने वंश की मर्यादा को रक्षा करने के लिए रावण को मारा और तुम्हें बंधन से छुड़ाया, किंतु अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, हमसे कोई संबंध नहीं। उस समय में लक्ष्मण जी को बड़ा बहुत बुरा लगा, किंतु बड़े भाई होने के नाते, मर्यादा के नाते उनको कुछ नहीं कहा। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा हमारी चिता सजा दो और राम के आप वियोग न सहने सह करके मैं उस चिता में जल करके खत्म हो जाऊं। उस समय लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए राम के ऊपर, राम किंतु धैर्य पूर्वक रहे। इसके बाद न चिता लगाई गई, जब आग जलने लगी तो सीता जी उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ में अग्निदेव उनको लेकर के प्रकटित हुए और प्रकटित होकर के सीता जी को निकाल करके दिया, सब प्रकार से निर्दोष हैं, आप इसे ग्रहण करो। तो उस समय सीता जी की जो चिता बनाई उनको बहुत बुरा लगा। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने सोचा कि अब इनका छोटा भाई नहीं होकर के बड़ा भाई होकर के, इसलिए छोटा भाई न होकर के बड़े भाई के रूप में बलदेव जी के रूप में ये यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार और भी उनकी लीलाएं हैं, चरित्र हैं। राम के रूप में तो बहुत उनकी लीलाएं हैं। लक्ष्मण जी हैं ना, अंत में जब राम की लीला समाप्त होने को हुई तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि को एक ऋषि माने काल ही आए जम और राम से कहा कि मैं आपसे एकांत में बातचीत करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बैठा दिया कि तुम ही द्वार पर रहो, कोई भी आए जब तक हमारा आदेश न हो किसी को आने मत देना। बलदेव लक्ष्मण जी वहीं पर बैठ गए और उनकी बातचीत आरंभ हुई। बातचीत माने आपका अब समय हो गया, अब अपना वैकुंठ धाम में पधारिए, यही कहना था। किंतु बीच में दुर्वासा ऋषि आए, बोले जब ही मैं रामचंद्र जी से भेंट करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी थोड़ी देर और ठहर जाइए फिर आप जाइए। ओ मैं एक मिनट भी नहीं ठहरूंगा, यदि नहीं जाने देगा तो मैं अभी तुम्हारे वंश को सब भस्मीभूत करके छोड़ दूंगा, तुम भी नहीं रहोगे, राम भी नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। अच्छा तो इससे अच्छा है कि मैं ही अकेले मरूं। रामचंद्र जी की ये प्रतिज्ञा थी, यदि लक्ष्मण या कोई भी आ गया उस समय तो उसको हम जान से मार डालेंगे। तो लक्ष्मण जी गए और इतने में काल तो अंतर्ध्यान हो गया। रामचंद्र जी, लक्ष्मण तुम क्यों आ गया? वहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी मिलने के लिए आए हैं और कहते हैं कि एक क्षण देरी होगी तो हम सबको भस्म कर देंगे, इसलिए सोचा जे मैं ही मरूं और सब क्यों मरेंगे। उन्होंने कहा जी अच्छा तो मैं तुमको मारूंगा नहीं, किंतु सदा के लिए छोड़ दिया। इतने कहने पर लक्ष्मण जी ने अपना शरीर प्रत्याग किया और अपने स्वरूप में चले गए। इस प्रकार से बलदेव जी की बहुत सी कथाएं हैं। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग कथा सुनने के बाद में स्नान करेंगे, स्नान कर करके तब फिर अपना अन्न इत्यादि कर करके गौर प्रेमानंद एक महामंत्र कर दो। परिवराजक महाराज महामंत्र।